ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका आज के 28 जनवरी के बरसाना आई कैंप के शाम के सत्संग में स्वागत है। हरे कृष्णा। कल हमने इस संध्या के सत्र में पूतना देवी का वर्णन किया था। कितने लोग थे उसके अंदर? सब लोग थे ना। तो आज हम पूतना के बारे में इतिहास बताएंगे। सबसे पहले उनका इतिहास, जो पहला वर्णन आता है उनका, समय के अनुसार एज पर दी क्रोनोलॉजी ऑफ टाइम, वो ऐसा है कि कंस जो हैं वो दिग्विजय कर रहे हैं। कंस की जो पत्नी थी ना, वो सत्यकेतु की कन्या थी, और वो एक बार अपने मायके गई थी पिताजी के पास। तो वहाँ पर एक असुर आता है प्रमिल नाम का। वो प्रमिल नाम का असुर उसको देख के बहुत मोहित होता है, और वो उग्रसेन राजा का रूप धारण करके उसके शील का हरण करता है। और वैसे भी ये जो पत्नी थी उग्रसेन महाराज की, कंस की माँ, ये बहुत वैष्णव अपराधी थी। ये वैष्णवों को बहुत हमेशा बड़ा बुरा बुरा भला कहती थी। बहुत उसका लंबा वर्णन है कैसे वैष्णवों को टोकती थी वो। तो उसकी चेतना भी वैष्णव अपराधी थी, और प्रमिलासुर उससे मोहित हो गया, और प्रमिलासुर ने उसके साथ भेष बदल के संग किया, और इस तरह से कंस का जन्म हुआ। तो उग्रसेन तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उग्रसेन से ऐसी संतान कैसे उत्पन्न हो सकती है? तो हर एक संतान जो उत्पन्न होती है वो उस समय उसके माता पिता का क्या चेतना है, क्या भावना है उस समय, किस भाव में वो एकत्र आ रहे हैं, क्या उनके मन की स्थिति है, उसके अनुसार ही बालक जन्म लेता है। उसी प्रकार के आत्मा को वो आकर्षित करता है। इसलिए हम भक्त लोग जो गुरु महाराज की कृपा ले चुके हैं दीक्षा के रूप में, वो पति पत्नी जो है वो गर्भ धारणा करने के पहले 50 माला जप करते हैं, कठोर नियम का पालन करते हैं, व्रत रखते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, संतों का आशीर्वाद लेते हैं, भक्तों का आशीर्वाद लेते हैं, वरिष्ठ वैष्णवों का आशीर्वाद लेते हैं, और फिर गर्भ धारणा करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारा प्रयास करने के बाद में जो चेतना बनती है उससे कृष्ण भावना मृत जिसका जिसके अंदर है, वैसा ही जीव आकर्षित होता है, और वैसे ही जीव की गर्भधारणा होती है, फिर वो जन्म होता है उसका। उसके बाद हम संस्कार देते हैं उसको, संस्कार भी वैसे ही होते हैं, जिसने 50 माला जप किया वो संस्कार भी वैसे ही देगा, फिर वो धीरे धीरे वैष्णव बनेगा। इस प्रकार से कंस का जन्म होता है। वो पुराने जन्म में काल नेमी था, उसका विष्णु के साथ में भयंकर युद्ध हुआ था, विष्णु ने उसको उसका वध कर दिया था, लेकिन फिर भी शुक्राचार्य ने उसको जीवित कर दिया। लेकिन यथावकाश जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद में वो कंस के रूप में आया, विष्णु का प्रखर शत्रु। अब ये एक आपको बताना जरूरी है कि हमको ये पता होना चाहिए कि रावण कुंभकर्ण जैसे जो इंद्रजीत जैसे जो योद्धा थे ना, वो कंस के सामने बहुत तुच्छ थे। ये मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ जब मैं पढ़ रहा था इसको, लेकिन इसका प्रमाण दिया गया है कैसा क्यों कह रहे हैं आचार्यगण। आप सब जानते हैं ना, जो रावण का रावण जब स्वयंवर में सीता के आया था तो वो शिव धनुष था वहां पर, उसकी लंबी कहानी है जनक महाराज के बाद कैसे आया वो, लेकिन संक्षेप में कहा जाए तो वो शिव धनुष वो था जो शिव और विष्णु के बीच में जो युद्ध हुआ था एक बार, बहुत घनघोर फेमस युद्ध हुआ था, उसमें शिव जी अपना धनुष उपयोग कर रहे थे और विष्णु अपना उपयोग कर रहे थे, तो बीच में विष्णु ने एक हुंकार किया उस तरह से, तो वो केवल हुंकार से वो शिव धनुष शिथिल हो गया, यानी क्या कहते हैं उसको, उसकी क्षमता बहुत कम हो गई, जैसे हम कहते हैं ना एनर्जी लेस, डिस्चार्ज हो गया पूरा। वो धनुष जनक महाराज के पास था, मतलब एक्टिव कार्यशील शिव धनुष भी नहीं था, वो जो शिथिल हो चुका था वो धनुष जनक महाराज के पास था। उसको भी उठाने के लिए 350 सर्वश्रेष्ठ मल्ल, और कहते हैं कि 500 या बैल जो सबसे शक्तिमान है, जो बैलगाड़ी को खींच रहे हैं, और फिर 350 पहलवान उसको धक्का दे रहे हैं, उठा के लेके आ रहे हैं, ऐसी स्थिति थी उसकी। तभी भी वो साल में एक बार उसको लाते थे उत्सव के जगह पर। तो वो धनुष उठाने के लिए रावण जब आते हैं तो कहते हैं रावण तो उसको टस से मस भी नहीं कर सकते, एक लव मात्र भी उसको हिला नहीं सकते, उसको सब पसीना बहाते हैं। हाँ, इतना सब जिन्होंने कैलाश को भी उठा लिया था वो उस धनुष को हिला नहीं सके। और फिर तो एक मैंने आपको उदाहरण दिया एक शक्ति का तुलना करने के लिए, ठीक है। बहुत लोग आए उसमें, कोई उठा नहीं पाया उसको, प्रभु रामचंद्र ने उठाया उसको और तोड़ दिया, वो बात अलग है। लेकिन यही कंस जो है, अभी आप कंस की विचार करिए, ये कंस ने जो दिग्विजय किया है ना, उसका पूरा वर्णन गर्ग संहिता में विस्तार रूप में दिया कि कंस कितना बलवान था, इतना बलवान था कि जितने भी राक्षसों का वर्णन भागवत में आता है शुरू से लेकर अंत तक 79 अध्याय में जितने राक्षसों का वर्णन राक्षसियों का वर्णन आया है, वो सारे राक्षसी राक्षसियों को उसने दिग्विजय के अंदर वश में किया था। जैसे तृणावर्त है, जैसे ये सब लोग एक के बाद एक, यहां तक कि वो ये सारे राक्षसों को पहले पूर्व दिशा में गया, पश्चिम में गया, दक्षिण में गया, उत्तर में गया, जितने भी सब लोग थे, कुछ समुद्र किनारे थे, कुछ पर्वत के ऊपर थे, केशी व्योमासुर, एक त्रिकुट पर्वत के शिखर पे था वो, वहां जाके चैलेंज किया, लात मारा उसको जाके, और सब लोगों को ना ऐसा उठा उठा के कई योजन फेंक दिया उसने, एक योजन 8 मील का होता है, कई योजन दूर दूर फेंक दिया, उसकी हड्डी वड्डी तोड़ दिया सब राक्षसों का, और फिर वो भाग के आए, शरणागत हो गए। कुछ लोग तो ऐसे ही देखा उसका पराक्रम, तो युद्ध विद्ध कुछ नहीं किया, ऐसे ही शरणागत हो गए, बोले ठीक है हम आपको टैक्स देंगे, आपके बने रहेंगे, जब वो आज्ञा करो वो आज्ञा पूरी करेंगे। फिर वो कंस एक बार ना बिहार के पास यानी कि मगध देश के पास गए, और तब तक उसने जिन राक्षसों को अपने वश में करके रखा था उसमें 5 मल्ल थे, चाणूर मुष्टिक कूट शल और तोशल, वो पांचों के साथ में अकेले मल्ल युद्ध की प्रैक्टिस करता था अलोन, और सब लोग थक जाते थे, तो वो ऐसे अपना तंबू लगाकर प्रैक्टिस कर रहा था। उसके पास ही जरासंध महाराज का राज्य था, जरासंध का मगध देश, और उसके बड़े राज्य में एक पशुशाला थी। उस पशुशाला में उसने कोलियापीड नाम का भयंकर हाथी, जिसके खुद के अंदर हजार हाथियों का बल है, खुद के अंदर वो हाथी बांध के रखा था सांकड़ से। अचानक वो हाथी जो है ना, वो पता नहीं क्या होता है उसको, उसको एकदम वो बिथर जाता है पूरा, एजिटेट कंप्लीटली। तो साकल तोड़ के भागता है तो लोग सब डर जाते हैं, जो इसका अकराल विकराल आवेश देखकर सब लोग उसके रखवाले वगैरह जो है ना सब सब भाग जाते हैं। और ये अपना तंबू कोष पशुशाला तोड़कर जाता है खुलेआम, और वहां भागते भागते पूरा अकराल विकराल स्वरूप में भावना में जाकर वहां प्रवेश करता है जहां पर कंस महाराज हमारे मल्ल युद्ध का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं, जैसे वो पांच मल्ल इतने बड़े राक्षस जैसे वो युद्ध कर रहे हैं, ये हाथी को देख के भाग जाते हो, क्योंकि हाथी की इतनी कितनी ख्याति थी पूरे तीन विश्व में, इतना भयंकर बलशाली हाथी था वो जरासंध के पास था। तो सब जितने भी छोटे मोटे और बड़े पांच मल्ल थे सब भाग गए, पहले कंस ऐसा खड़ा हो गया। तो हाथी ने उस पर आक्रमण किया, तो कंस ने क्या किया, उसकी सुंड पकड़ी और ऐसा गोल 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 घुमाया उसको और दोबारा फेंक दिया। वापस जाकर वो उस तंबू में गिरा जहां पर वो से तोड़ कर आया था। वो जरासंध ने देखा, अरे बाप रे, कोलियापीड को उठाकर फेंक सकने वाला योद्धा कौन हो सकता है वो? तो उनको बताया कि वो कंस महाराज यहां दिग्विजय में है। तो वो जानते थे दिग्विजय में है तो हमारे पे भी अटैक करेंगे और हमको भी युद्ध करना पड़ेगा। तो जरासंध ने क्या किया, वॉर डिप्लोमेसी बोलते हैं उसको, युद्ध नीति। उसने अपने दो लड़कियों को बुलाया, बोला सज धज के आओ, अलंकार वगैरह पहन के आओ, सब लोग फूल माला पहन के आओ, और फिर बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे हाथी, बहुत सारे सारथी, बहुत सारे घोड़े रथ सब लेके गए। सीधे तंबू में पहुंचे कंस महाराज के और कहा, ये मेरी दो कन्याएं हैं अस्थि और प्राप्ति, मैं आपको विवाह में देना चाहता हूँ। और वहीं पर तंबू में विवाह कर लिया उनका, और पूरा दहेज वहेज दे दिया उनको, और रिश्तेदार बन गए। तो युद्ध वुद्ध कुछ हुआ नहीं और ना झुकना भी पड़ा एकदम, उसको कहते हैं युद्ध नीति। इतना कंस बलशाली था। और वहां रुका नहीं वो, उसके आगे वो पूर्व दिशा में गया, बंगदेश यानी बंगाल। वहां पर अरिष्टासुर नाम का राक्षस था, वो बैल के शरीर में था, बहुत बड़ा सिद्ध राक्षस था। उसने बहुत तपस्या करके बहुत भयंकर सिद्धियां प्राप्त की थी। उसको इसने लात मारकर मुक्के मारकर दूर दूर तक भगाया, पसीना निकाला उसका पूरा, तो वो भी शरणागत हो गया। आप भागवत में पढ़ेंगे ना, अरिष्टासुर का वर्णन पढ़ेंगे, जब वो आया ना तो उसके चार पैर जहां जहां गिरे वहां पर धरणीकंप हुआ, और धरणी के नीचे का जितना जल का स्रोत था वो फव्वारे की तरह ऊपर उठने लगा। हर जगह पर जहां 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 तक आया वो सब पानी पानी हो गया। उसने जहां उसका सांस चल रही थी वो सारे पेड़ गिर रहे थे उसके अंदर, उसके सांस मतलब क्या, तूफान था पूरा। वो उसकी पूंछ जो हिल रही थी, उसके आकाश से बादल यहां से वहां हो रहे थे, और उसकी गर्जना सुनकर कई गोपियों का गर्भपात हो गया। ऐसे भयंकर राक्षस को कंस ने केवल मुक्के और लात मार के शरणागत करवाया। उसके बाद में वो और ऊपर गया, किधर, आसाम, यानी कि आज का आसाम, उस समय का पराग ज्योतिषपुर। तो वहां पर एक नहीं बहुत सारे राक्षस का सम्मेलन था, उधर तृणाव्रत भी था, उधर अगासुर था, उधर बकासुर था, उधर नरकासुर था, उधर धेनुकासुर था, सब ऐसे एकदम अपने दोस्ती में वहां पर रहते थे। तो जैसे ही नरकासुर को मालूम पड़ा कंस महाराज आ रहे हैं दिग्विजय करने के लिए, तो उन्होंने एक एक करके सबको भेजा, जाओ। तो बकासुर को उसने अभी बहुत लंबा वर्णन है उसका, कैसे कैसे पीटा उन्होंने कंस ने, बकासुर को वश करवाया। फिर धेनुकासुर आया, उसको आसाम ने फेंक दिया। फिर तृणाव्रत आया, तृणाव्रत उसको 100,000 योजन यानी 800,000 मील आकाश में लेके गया। भगवान को तो केवल उसके 5% भी ऊपर लेके गया था, कंस को वो 100,000 योजन आकाश में लेके गया था। और वहां से कंस ने उसको दबोच कर पृथ्वी में आके पटकाया, वो मरा नहीं। लेकिन तो इस तरह से बकासुर हो गया, अगासुर हो गया, धेनुकासुर भी हो गया, तृणाव्रत भी हो गया। हाँ, अभी बारी थी पुतना की, क्योंकि अगासुर बकासुर और पुतना ये भाई बहन हैं। तो दोनों भाइयों को परास्त करके भस्म कर दिया। तो फिर पुतना को भेजा नरकासुर ने, जाओ। ये पहले ही पहला उनका जिक्र होता है, मतलब शिव उसका वर्णन पहली बार आता है। तो जैसे कंस ने पुतना को देखा तो उन्हें हाथ जोड़े, पर तुम तो स्त्री हो, मैं योद्धा वीर हूं और मैं स्त्रियों पर हमला नहीं करता, तुम ऐसे करो मेरी बहन बन जाओ और प्रेम से रहो। और ये सब जो सीन पूरा नरकासुर ने देखा, नरकासुर आएगा दोस्ती का हाथ हाथी घोड़ा है। इस तरह से पहली मुलाकात जो है वो कंस की पुतना से हुई। और ये पूरी जो गैंग है ना, उत्तर और पूर्व की, उत्तर पूर्व गैंग, नॉर्थ ईस्ट, वो सब कंस के वश में हो गई। इतना बड़ा पराक्रम कंस ने किया था। उसके बाद में कंस ने इस सारे राक्षसों को, आप लोग हरे कृष्ण मंत्र जप करो तब तक, नहीं तो सब लोग उस बोर्ड को देखते रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हो गया, बोलते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर ये सारे राक्षसों को लेकर कंस ने इंद्र के अमरावती पर आक्रमण किया, और उसका एक बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन दिया गया उसका, कैसे इंद्र के सारे देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता सब लोग आ गए, उन्होंने कंस के साथ युद्ध किया, कंस ने सारे देवताओं को खदेड़ दिया, इंद्र का वज्र को तोड़ दिया, इंद्र का वज्र अपने तलवार के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिया उसके, वज्र नीचे पड़ा हुआ है, फिर तलवार लेके इंद्र आता है तो उसको भी परास्त कर देते हैं, और फिर इंद्र को अपने सारे देवताओं को लेकर केवल भागना पड़ता है जान बचाने के लिए। और बहुत सारे देवता कह रहे थे, उन्होंने अपना शेंडी छोड़ दिया, यू नो शिखा छोड़ते मतलब क्या, आई सरेंडर टू यू, ऐसा वर्णन आया है। बहुत सारे देवताओं ने अपना नाड़ा छोड़ दिया लहंगे का, उसका मतलब यार सरेंडर टू यू, प्लीज डोंट डू एनीथिंग, हम लोग बहुत डर रहे हैं आपसे, बचा लो हमें। बाकी सारे बड़े देवता भाग गए। उसके बाद ये कंस महाराज महेंद्र पर्वत पर गए, और महेंद्र पर्वत पर कौन रहता है, परशुराम भगवान रहते हैं। परशुराम भगवान ने छठे अवतार में अपना लीला समाप्त करके 21 बार क्षत्रियों का संहार करके वो महेंद्र पर्वत पर जप करने के लिए गए। तो ये उधर गया, उसने 100 बार महेंद्र पर्वत को उठाया, हर बार उठा के ऐसा हिलाया तो उनका ध्यान भंग हो गया, वो लाल नेत्र करके क्रोधित होकर वो आए, तो तुरंत उसको दंडवत प्रणाम किया और बार बार प्रदक्षिणा किया और बार बार चरणों में लोटपोट होकर वंदन किया उनको। तो परशुराम भगवान बोले, ए बंदर के बच्चे, बहुत घमंड है तुम्हें अपने क्षत्रिय पर, इतनी शक्ति के पर घमंड है, पर्वत उठाने की इतनी हिम्मत करते हो, ये लो ये विष्णु का धनुष है, ये विष्णु का धनुष जो है, जो विष्णु ने त्रिपुरारी राक्षस को मारने के लिए शिवजी को दिया था, फिर शिवजी महाराज ने त्रिपुरारी का वध किया था इससे, फिर शिवजी महाराज ने, शंकर भगवान ने 21 बार जो मैंने संहार किया क्षत्रियों का, वो सत्ता करने के पहले संहार करने के लिए ये विष्णु धनुष मुझे दिया है, अगर तुम में इतना वीरता है तो इसको प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाओ। अभी ये विष्णु धनुष वो शिव धनुष से कई गुना अधिक शक्तिशाली था, उसका वजन था 1,00,000 भार, एक भार 3 मन का होता है, 1 मन 40 किलो का होता है, कितना हो गया 120,000 किलो, आज के किलो के हिसाब से, उस समय तो मन भार से गिनते थे, 1,20,000 किलो वजन का, 7 ताड़ के ऊंचाई का वो धनुष था। रावण ने शिव धनुष को वो 1 इंच भी ला नहीं सका, कंस ने विष्णु धनुष को 100 बार उठाया, 100 बार प्रत्यंचा चढ़ाया, 100 बार चढ़ाकर तणत्कार किया, 100 बार उससे आकाश से उल्काएं गिर गई, तारे गिर गए, हाथी रोने लगे, देवता लोग भयभीत होकर कांपने लगे, अरे प्रलय तो नहीं हो रहा है, प्रलय का समय तो नहीं है, बीच में क्या हो गया। केवल कंस महाराज ने 100 बार विष्णु धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाकर टणत्कार करके जो ध्वनि उत्पन्न किया वो 14 भुवन में गूंजा। फिर परशुराम जी प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा ये तुम्हें मैं भेंट देता हूं, प्लीज टेक इट एज अ गिफ्ट। ये मैंने सब क्यों बताया आपको, यही समझाने के लिए कि रावण से कई हजारों गुने गुना बलवान कंस था, और उसके साथी भी थे, कुंभकर्ण वगैरह से ज्यादा बलवान थे वो। और परशुराम ने एक लास्ट लेसन में बोला कि मैं आपको भेंट देता हूं विष्णु धनुष, और ये धनुष जो तोड़ेगा ना, एक दिन टूटेगा ही, जो तोड़ेगा वो तुम्हारा वध करेगा। खट्टा मीठा बोलते हैं उसको, खट्टा मीठा मतलब पता ना, समझ जाना, बहुत खुशी होगी आपको, लेकिन बीच में एक मटेरियल वर्ल्ड में कभी पूरी खुशी मिलती नहीं है, उसके पीछे कुछ ना कुछ टैग रहता है, टैग सिगरेट, बहुत ऐसा कोई हीरो पी रहा है, लेकिन सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, इट कॉजेज कैंसर। तो ये कंस की थोड़ी सी पहचान मैंने आपको दी, और कैसे कंस की पहली मुलाकात पुतना से हुई, ऐतिहासिक घटना है ये। तो ये सब लोग है ना जाके मथुरा में रहने लगे, क्योंकि तो जब राजा कमांड करेगा तब तो रेडी होना चाहिए ना हम अपने। तभी दूसरा प्रसंग कहाँ आता है, दूसरा प्रसंग आता है जब भी आप सब जानते हैं ना भगवान का जन्म हुआ, फिर भगवान को गोकुल में दाल भेज दिया गया, सब पैरदार सो गए थे, फिर वापस आए कन्या को लेकर आए, और वो कन्या रोने लगी, फिर सब लोग उठ गए, फिर कंस महाराज को वर्दी दिया, फिर कंस महाराज आए और देवकी दे दे इस कन्या को मुझे, देवकी कह रहे ये तो कन्या है, तो पुत्र नहीं है, मैं शादी करूंगी तुम्हारे बेटे से इसकी, वो तो सुनने को तैयार नहीं है, उसने उसको छीना और उसी तरह से पटकने जा रहा था, लेकिन ये कन्या जो छूट गई उसके हाथ से, आकाश में गई, अष्टभुजा धारण किया, बकराल विकराल रूप धारण किया, उसके सारे देवता आके उसकी पूजा कर रहे हैं, सब बहुत भव्य दिव्य दृश्य देखा आकाश में। तो ये कंस जो है बाप रे एकदम हताश हो गए, गिरकर रोने लगे, उसने तो उसको धमकी भी दिया ना, बंद कर दे अपने बहन को और भैया बहन को कष्ट देना, तुम्हारा काल कहीं और जन्म ले चुका है, बस कर अभी तुम्हारे अत्याचार। तो कंस तो देख रहा है कि ये तो पूरा प्लान ही फेल हो गया, मन में कह रहा है अरे देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, आकाशवाणी भी झूठ होती है, ऐसे मन में सोच रहा है, लेकिन सब प्लान तो फेल हो गया। देवी ने दर्शन दिया और देवी ने धमकी भी देके गई, तो एकदम नम्र मोम गोगल गाय बन गया वो, देवकी के चरणों में गिरा, माफी मांगी उसने, बहुत बड़ा तत्व ज्ञान सुनाया उसको, अरे मैं तो कठपुतली हूँ, कर्म के हाथ में, विधाता के हाथ में कठपुतली हूँ, और वो मैं तो कुछ किया नहीं, सब मेरे हाथ से करवाया गया, सब कर्मों का खेल है वगैरह वगैरह वगैरह। और देवकी की महानता देखो आप, जिसने उसके 6 बालकों का आंखों के सामने छिन्न विच्छिन्न करके वध किया था, उसने माफी मांगी, तुरंत माफ कर दिया उसको, उसको तो उसके मुंह पे लात मारने का चांस था उस समय, या एक तमाचा मारने का भी चांस था, लेकिन कुछ नहीं किया उसने। आचार्यगण उसका कारण बताते हैं, अगर मैं और आप होते ना तो जरूर 2-4 लात मार देते उसको, कम से कम अच्छा मौका है, ले लो बदला उसका। लेकिन कहते हैं कि 6 बालकों का वध होने के पश्चात जितना कष्ट देवकी वसुदेव को हुआ था, खास करके देवकी को, उसके बाद गर्भपात हो गया एक तरह से, मतलब बलराम जी को यहाँ से वहाँ कर दिया गया, लेकिन लौकिक दृष्टि से मथुरा में न्यूज़ क्या थी कि देवकी का 7वां गर्भ का गर्भपात हो गया, लेकिन 8वें गर्भ के रूप में भगवान विष्णु ने दर्शन जब दिया और जो आदान प्रदान संवाद कृपा वर्षा जो भी की, उससे देवकी को इतना आनंद हुआ था, इतना आनंद हुआ कि वो सारे दुख को भूल गई, इसलिए वो कंस को माफ कर सकी। अगर वो दर्द में होती तो पता नहीं क्या करते, लेकिन वो भगवान ने दर्शन देकर एक तो निर्भय कर दिया, एक तो मीठे मीठे वचन बोले, पुराने जन्मों की याद दिलाई, आश्वस्त किया, स्तनपान किया, इतना सुख दिया देवकी को, तो देवकी तुरंत माफ कर। इसलिए शास्त्र में आचार्य बताते हैं कि कृष्ण भावना जब हमारे अंदर होती है जैसे कृष्ण भावना यानी कृष्ण का दर्शन किया, कृष्ण के संग का अनुभव किया, सान्निध्य का अनुभव किया, तो कृष्ण का अनुभव जो करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से, दुनिया के दुख होने पर भी उनको ज्यादा उनका प्रभाव नहीं होता है उनके ऊपर। आपको समझ में आया इस बात को? हमारे जीवन में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है, लेकिन कृष्ण भावना ऐसा एक दवा है, जो कृष्ण भावना को अपनाता है, कृष्ण का किसी न किसी प्रकार से सान्निध्य का अनुभव करता है, वो व्यक्ति इतने भयंकर दुख होने पर भी उस पर दुख का प्रभाव नहीं होता है और वो दुख के बिना आनंद में रहता है। ये देवकी के उदाहरण से हम देख सकते हैं। तो फिर पश्चाताप होकर एक तरह से वो प्योर डिवोटी बन गया, भक्त बन गया वो। उस दिन तो परफेक्ट कॉन्शियसनेस में था, परफेक्ट कॉन्शियसनेस में था, चेतना में था। उसने देवकी के चरणों में गिर गिर कर उसकी माफी मांगी, देवकी ने माफ भी कर दिया उसको, और उसने पश्चाताप करके गया, वो हृदय से पश्चाताप किया उसने। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, अगले दिन दरबार में गया, उसी मूड में था वो, एकदम पश्चाताप मूड में था, आखिर सब बंद करो, अभी अत्याचार करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। तो जो जो सभा में वो बैठा था, उस सभा में कौन थे, ये सब थे राक्षस लोग, और मंत्री भी थे उसके, मथुरा वाले थे, बाहर के वश किए हुए राक्षस भी थे। उन्होंने क्या किया, क्या महाराज आप इतने डरते हो, आपकी तलवार के चमक से देवता भी कांपते हैं, इंद्र भी यहां से तलवार निकालेंगे, वो चमक से वहां पर कांपते हो, और विष्णु तो अपने भक्तों के हृदय के अंदर छुप गए हैं, ब्रह्मा जी तो तपस्या करने में बिजी है, शिव जी अपने कैलाश में व्यस्त हैं ध्यान में, बाकी इंद्र विंद्र की चिंता मत करना, हमने तो सब लोगों को परास्त कर दिया पहले, आप चिंता क्यों करते इतना, हम है ना, आप अपने शत्रु का बदला लो, शत्रु का वध करो, ढूंढो उसको आप। तो कंस सुबह दो अच्छी चेतना में थे, ही वॉज इन गुड कॉन्शियसनेस, कुछ समय के लिए क्यों ना हो, यू शुड अप्रिशिएट। वापस ऐसा होता ना, जैसा अपना होता ना गुब्बारा होता ना, फुगा होता ना, फुगा वैसा फुगाते हवा डाल के, फिर वो ऐसा हो जाता है, वापस हवा आ गया तो वापस फूकता है, वैसे वापस वो ठीक है। उतने में पुतना आई लास्ट में। पुतना ने कहा, महाराज आप क्यों डरते हो, मैं हूं ना, अरे मेरा भोजन ही नवजात शिशुओं का खून है, मेरा प्रिय भोजन है वो, और ऐसे ऐसे नवजात शिशु को मारती हूं मैं, अरे मैं खेचरी भी हूं, तिनका लेती हूं घास का, उसको अभिमंत्रित करके हवाई जहाज बनाती हूं, उस पर बैठकर मैं कहीं भी यात्रा कर सकती हूं, आप आदेश दीजिए, मैं जाकर सारे नए बच्चों का बदक बद करके आती हूं। तो कंस का और हौसला बढ़ गया, मैं जाओ मथुरा में और गोकुल में पिछले 7 दिन में जितने लोगों का जन्म हो गया है, कुछ लोग कहते हैं 6 महीने, लेकिन जो भी हो नवजात जितने बालक हैं अभी अभी जन्मे हुए सबका वध करके आओ। होलसेल मैसेकर। तो वो जब निकली ना, तो जैसे उतरी वो सबके घर में गई, केवल कृष्ण के घर पे नहीं गई, वो सबको मारते 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 आई, वो किसी को पता नहीं चला नहीं, क्योंकि सबसे पहले उसने भेष बदली किया, सबसे पहले सुंदर स्त्री का भेष लिया उसने, और एक हाथ में कमल लिया, ऐसे कमल को ऐसे ऐसे करके आ रही थी वो। और सुखदेव जी हमारे भागवत में कितने श्लोकों में उसका वर्णन करते हैं सौंदर्य का, आपको आश्चर्य होगा, सुखदेव जी को राक्षसी का वर्णन करने की जरूरत क्या थी इतनी, वो कैसे चल रही है, उसके हाथ में कमल कैसे है, उसके नाक कैसे हैं, उसके सुंदर अलंकार कैसे हैं, वो वस्त्र कैसे पहनी हुई है, कितनी सुंदर दिख रही है, मानो लक्ष्मी दिख रही है, ऐसे सुंदर सुंदर श्लोकों में वर्णन किया उसका। तो आचार्य बताते ऐसा वर्णन क्यों किया है, क्योंकि वो राक्षसी है, और उसके जो वर्णन किया है ना उससे भी पता लगता है कि ये सुसंस्कृत अच्छे घर की कन्या नहीं है, इसके चाल से भी जो वर्णन किया जा रहा है उसे पता चलता है कि वो एक उच्छृंखल औरत है, जिसको कोई संस्कार नहीं है, अच्छे कुल की नहीं है, अच्छे पिता माता की पुत्री नहीं है वो, ये भी जाहिर है। फिर भी सुखदेव जी का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य बताते हैं, क्योंकि जो भगवान की ओर जाता है वो राक्षस भी होगा तो भी वर्णन करने योग्य होता है, इज वर्थ ग्लोरिफिकेशन। जो भगवान की ओर जाके किसी भी कारण से जा रहा है, भगवान की ओर जा रहा है, वो वंदनीय होता है, इसलिए सुखदेव जी राक्षसी होने पर भी उसका सुंदर वर्णन कर रहे हैं। तो उसने अपने स्तरों में कालकूट विष भर दिया था, कल प्रभु जी ने बताया कि उसके स्तनों में दूध भी था, तो मेरा मेडिकल माइंड कल थोड़ा एक्टिवेट हो गया था, मैं सोच रहा था कि मैं दूध तो स्तन में किसके आता है, जो माता बनी हुई है उसका स्तन में दूध आता है ना। ये तो ऐसी सिंगल थी, लेकिन उसके पास सिद्धियां थी बहुत। जिस सिद्धि से उसने बाहर से अपने स्तन में विष डाला, उस सिद्धि से दूध भी उत्पन्न किया उसने। और फिर आप जानते हैं ना, भगवान ने उसके, प्रभु जी ने अच्छा बताया कल, कि किसे उस चढ़ गए उसके ऊपर। हाँ, अपने होंठ जो है ना, सुंदर कोमल होंठ उनके, कैसे कोमल, कैसे भगवान का शरीर था ना, वो मक्खन से भी अधिक मुलायम था। कभी आपने किसी ने फ्रेश मक्खन को अनुभव किया है? एकदम अभी अभी भी निकाला है उसको, ऐसे ठंड के मौसम में नहीं, ऐसे बंबई जैसे मौसम में अभी अभी निकाला हुआ मक्खन कभी हाथ में निकाला है आपने? मैंने 20-25 साल तक घर में वो किया है, मुझे याद है। तो आप ऐसा मक्खन हाथ में लेंगे, और ऐसे ऐसा मक्खन होगा, और ऐसे उंगली मिलाएंगे ना, तो आपकी उंगली मिल जाएगी, इतना मक्खन मुलायम होता है। और भगवान का शरीर कहा है, उससे भी अधिक मुलायम होता था। यशोदा देवी, रोहिणी देवी कृष्ण बलराम को उठाते समय बार बार सोचती थी कि मेरी उंगलियां इतनी सख्त है, और ये कोमल शरीर को मैं उठाऊंगी तो उनको दर्द तो नहीं होगा। ऐसे उनके मन में, चैतन्य महाप्रभु की माता जी के मन में, कौशल्या के मन में ये बार बार विचार आते थे कि अरे इतना कोमल शरीर मैं मेरे हाथ से, एडल्ट हाथ से उठाऊंगी तो फिर कैसा कष्ट होगा उनको। ये भावना उनके मन में होती थी। जब जाते थे गाय चराने के लिए, तो वो गोपियां रोती थी विचार करके ही, अरे इतने कोमल चरण कमल को मैं अगर उंगली भी लगाऊंगा ना ऐसे, तो लाल हो जाता है वहां पर, केवल ऐसे हाथ लगाने से ही। तो अगर वो सख्त कठोर पत्थर से उसका स्पर्श हो गया तो पता नहीं क्या होगा, अगर कांटा लग गया तो क्या होगा, कंकड़ लग गया तो क्या होगा, शिला लग गई तो क्या होगा, ऐसे विचार करके रोते थे वो दिन भर। तो जिनका शरीर इतना कोमल है, अभी आप बताइए उसके होंठ कितने कोमल होंगे। आपके शरीर में बहुत बाजू में शक्ति, आपने एकदम फौलाद जैसी छा दी आपकी, 36 इंची और ना 56 इंच, सॉरी। फिर भी आपके होंठ कैसे होते हैं, एकदम कोमल। उसमें तो वो, उसमें वो बालक है, अभी नवजात शिशु है, सारा शरीर ही कोमल है मक्खन का, उसमें भी उसके होंठ कितने कोमल है। उन कोमलोत्तम होठों से उसने पुतना के स्तन को स्पर्श किया, तो आनंद आना चाहिए ना बहुत। लेकिन ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम् हम। माता के लिए वो होंठ इतने कोमल है, इतने चरण कमल कोमल है, शरीर कोमल है, लेकिन वही कोमल होंठ उसके मृत्यु का कारण बने। और वो अभी वर्णन आता है उसका, अभी देखो। भगवान ने भी, प्रभु जी ने बताया ना कल, उन्हें आंख बंद कर लिया। उसका एक कारण है कि वो सोच रहे हैं कि दूध माखन खान देने के बदले में मौसी जी आई बीज पिलाने, इसलिए आंख बंद कर लिया। दूसरा, वो शंकर का ध्यान कर रहे थे उस समय, क्योंकि तो शंकर जी ने वो समुद्र मंथन में दूध विष पिया था ना, तो उनकी कृपा ले रहे थे वो, कि अभी मुझे विष पीना है, इसका थोड़ा शक्ति दे दो। और तीसरा बताया प्रभु जी ने कि वो राक्षसी थी, स्त्री थी, पहले ही वध करने के लिए स्त्री सामने आ गई, तो वो संकोच हो गया उनको, और फिर उन्होंने उनका विष, बाद में दूध, और बाद में प्राण सब छीन लिया, और वो छोड़ 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 करके भागी और वन में गई, वन में आंगन छोड़ के बाहर गई। बार बार जाते जाते कहते नंद बाबा का 6 कोस का खेत नष्ट कर दिया उसने, जब वो गिर गई तब। 6 कोस के नहीं, 12 मील, 12 मील का शरीर था, तो वो जहां गिरी वो सारा खेत पर सब नष्ट कर दिया उसने। तभी तो, और कुछ ऐसे वैष्णव ब्रजवासी बताते हैं कि भगवान है ना बहुत ही गंवार हैं, जब ब्रज में आते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको तो बहुत बड़ा मेटिकुलस हिसाब किताब आता नहीं है, वो मोटा मोटा हिसाब रखते हैं। तो मोटा मोटा हिसाब क्या था, माँ बनकर आई थी दूध पिलाने के लिए, इतना ही मोटा हिसाब लिया, बाकी सब सब हिसाब किताब छोड़ दिया उन्होंने। कितने हमारे भगवान दयालु, देखो आप कितने दयालु हैं। एक चिंगारी रहती है ना हमारे अंदर थोड़ा भजन करने की, उसी को हमारे गुरु और भगवान हवा देते रहते हैं, और उस चिंगारी के आसपास इतने सारे दुर्गुण भरे रहते हैं, इतने सारे कहने लायक भी नहीं होते, इतने दुर्गुण भरे रहते हैं, तो वो सारा दुर्लक्ष्य करके वो चिंगारी को हवा देते हैं, चिंगारी की ज्योति बनाते हैं, उसको अग्नि बनाते हैं, और सारे आजू बाजू में जितने दुर्गुण है वो सब जल कर भस्म करके केवल उस ज्योति को स्वीकार करते हैं। वैसे इतने भयंकर बालकों की घाति नहीं, नवजात शिशुओं की घाति नहीं, उनका खून पीने वाली खेचरी, इतनी भयंकर राक्षसी थी वो, इतने पाप थे उसके, पता नहीं अगर भगवान ने नहीं चूस लिया होता उसका स्तन तो कई हजारों जन्म तक वो पापों का फल भोगती रहती, लेकिन भगवान ने एक शॉर्टकट में उसका सब कुछ खत्म कर दिया और केवल उतना ही ग्रहण किया कि वो माता बनकर दूध पिलाने के लिए आई थी और सीधे उसको गौलोक धाम में यशोदा देवी की असिस्टेंट के रूप में परिचारिका धात्री बना दिया। धात्री जो सातवीं माता में सातवीं माता एक माता है परिचारिका नर्स, उसको मुक्ति मुक्ति नहीं दिया उन्होंने, सीधे गौलोक धाम में सेविका बना दिया, वात्सल्य रस में प्रमोशन दे दिया सीधे। तो अगर वो ऐसी बच्चों के खून पीने वाली और पाप करने वाली खेचरी, एकदम बुरी बुरी औरत होने पर भी भगवान ने उसको ये फल दिया, तो हम लोग भक्ति बन भक्त बनेंगे और पाप छोड़ना छोड़ देंगे और भक्तों की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो कितना फल देंगे वो, कितनी कृपा करेंगे, हमको पुतना बनने की जरूरत नहीं उसके लिए। लेकिन सोचना जरूरी है कि पुतना इतनी भयंकर होने पर भी भगवान ने उसका पॉजिटिव जितना पॉइंट था उतना ही ग्रहण कर लिया, तो अगर हम पूरे पॉजिटिव बनेंगे, सकारात्मक बनेंगे, तो हमें भगवान कितनी कृपा करेंगे। इस विचार से हमको उत्साह से भक्ति करनी चाहिए। तो कैसे दिख रही थी वो, कहते हैं कि काजल के पहाड़ कैसे होते हैं, काजल के पहाड़ वैसे उसके स्तन दिख रहे थे। और बहुत सुंदर वर्णन प्रभु जी ने कल भी किया था। तो उस स्तनों के शिखरों पर नीलमणि कृष्ण जो है वो विहार कर रहे थे, उस स्तन को छोड़ा नहीं था उन्होंने, पूरा प्राण छीन लिया उसका। उसके बाद में ना सब लोगों को बहुत चिंता हुई, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। अभी 12 मील का शरीर काजल के पहाड़, उस पर एक छोटा सा बालक नीलमणि तेजस्वी प्रकाशमान दिखाई पड़ रहा है, जाना कैसे उसके ऊपर। तो कहते हैं कि उसकी जो जटाएं थी ना, जो बाल थे ना, वैसे वो पूरे ऐसे खुल गए जैसे वो गिर गई। तो बाल जहां बिखरे थे ना, तो ब्रजवासी ने उसमें गांठे लगाई, बहुत सारी गांठे लगाई, और फिर एक एक गांठ पे ऐसे पैर रख के सब कान के पास गए, फिर कान को ऐसे पकड़ के सब लोग मुंह पे गए। कहते हैं कि उसके मुंह पे 100-200 ब्रजवासी घूम रहे थे ऐसे ही, 100-200 ब्रजवासी अदर मूविंग अराउंड ट्राइंग टू गेट टू द माउंटेन ऑफ ब्रेस्ट। फिर कैसे भी करके उन्होंने सीढ़ी वीढ़ी लगा के ऊपर से नीचे से वो गांठों के ऊपर चढ़ के सीढ़ी ऊपर करके फिर ऊपर पहाड़ पे चढ़े और पहाड़ से बच्चों को लिया और बच्चे को लेके सीढ़ी से उतरे। फिर ऐसे करके करके तब तक नंद महाराज लौट के आए थे, वो पूछ रहे क्या हो गया। तो फिर वो बहुत डांटा उन्होंने, ऐसे कैसे हुआ, ये क्या हुआ, क्या किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि सब लोग सबको लग रहा था कमल ही नहीं आई ना, कमल ही मतलब लक्ष्मी देवी आई, किसी को जरा सा भी डाउट नहीं आया। तो भी जब ये कृष्ण को हाथ में लिया तो सभी गोपियों ने यशोदा को बहुत डांटा, तुम किसी के भी हाथ भी देती हो, विचार भी नहीं करती हो, नाम पता आता, गोत्र जाति कुछ पूछा नहीं, सुंदर दिखी कमल देखा तो तुरंत दे दिया उसके हाथ में। दूसरे ने कहा तुमको देखभाल करने नहीं आता बालक का, तीसरे ने कहा हाँ कैसे आएगा, इतने बुढ़ापे में बालक हुआ तो ट्रेनिंग किधर है इसको, बुढ़ापे में हुआ था ना। नंद बाबा की 85 वर्ष के ऊपर आई थी, उनकी भी 80 वर्ष के ऊपर आई थी, सब पुत्र होने का समय निकल गया था उनका। तो ये पुतना कौन थी, अच्छा एक बात बताता हूं उसके पहले, इतिहास के पहले, अभी उसको जलाने के लिए इतना बड़ा शरीर, तो आचार्य बताते हैं उन्होंने 108 उसके टुकड़े ने किए, ढीक बनाए, ढीक मतलब 108 ढेर जमा हो गए हैं, 108 किए, तोड़ तोड़ के जितना भी 108 चिताएं बनाई, और 108 ग्वाल बालों ने उस चिता को मुखाग्नि दिया, मुख तो मतलब सब तोड़ दिया था, लेकिन हर एक को अग्नि एक एक बालक ने दिया, ग्वाल बाल ने, जो ग्वाल बाल कौन थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, वो ब्रजवासी थे, उन्होंने चिता दिया, दहन किया उसका। और उस जहन जब हो रहा था तभी अगुरु चंदन और सुगंधी खुशबू आ रही थी, सब जगह सुगंध सब जगह फैल रहा था। तो ये कृष्ण संपर्क की महिमा है, आचार्य बताते हैं कि कृष्ण का संपर्क जिसको होता है, अभी खाली उसको कृष्ण के होठों का संपर्क हुआ है, और कुछ ऑफकोर्स उन्होंने लात भी मारी थी उसको दूधपुते से, मैं हाथ हाथ से भी स्तन पकड़ा था उसका, लेकिन कोमल से कोमल शरीर के हिस्सा का स्पर्श हुआ था, उसके वजह से उसको ये भाग्य प्राप्त हुआ। अभी पुतना का और एक अर्थ भी है, पुतना जिसको पुत्र नहीं है, संस्कार करने वाला कोई नहीं था उसका, अगर वो छोड़ देते वो सड़ जाता वहीं वहीं पर। तो 108 पुत्र बने उसके अग्नि देने के लिए। तो जैसे पुत्र की आध्यात्मिक स्थिति होती ना, उसके बल के ऊपर वो जलाने वाले जो जलता है व्यक्ति, उसको उसका गति प्राप्त होती है। मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति कितना स्पिरिचुअली एडवांस्ड है, कितना आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत है, कितना भक्ति में आगे बढ़ चुका है, उसके भक्ति के बल का लाभ उस मुखाग्नि के द्वारा उस व्यक्ति को प्राप्त होता है, उसकी गति उस तरफ होती है। तो ये सारे भगवान के ऐसे सखा थे कि सुखदेव जी भी को परीक्षित महाराज भी प्रश्न पूछ रहे हैं, देवता प्रश्न पूछ रहे हैं, कई जगह सभाओं में संभाषणों में और संवाद में प्रश्न पूछा गया कि ये ब्रजवासी बालकों का क्या पुण्य है। ब्रह्मा जी भी पूछ रहे हैं कि इन्होंने क्या इतना पुण्य किया है कि कृष्ण कृष्ण के साथ उनकी दोस्ती है, इनकी मित्रता है। हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये परम ब्रह्म जो है उनकी मित्र बने हुए हैं, क्या उनका पुण्य करना है। ये देवताओं को जो विधाता विधाता कहते हैं उसको, ब्रह्मा जी का और एक नाम क्या है, विधाता, सब जानते हैं वो किसका किसका हिसाब किताब क्या है, सब जानते हैं। वो ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि इनका क्या हिसाब किताब है, कैसे वो इतने जिनको मैं पहचान भी नहीं पाया उनको ये सब लोग भूख से निकाल के खाना खा रहे हैं, उससे कैसा कर्म है उनका, ये कैसा भाग्य है, क्या पुण्य कर्म है। वो ब्रजवासी बालकों ने उनको अग्नि दिया, इतना भाग्य प्राप्त हुआ उनको, और धात्री का तो दिया ही स्थान उनको, लेकिन लौकिक रूप से भी उनको इतना कृपा किया। यानी कि पुतना जो राक्षसी थी उसका पूरा शुद्धिकरण करके उसको शुद्ध भक्त बना दिया, मां बना दिया एक तरह से, परिचारिका भी एक माई होती है, माई बना दिया स्ट्रेट। जो हजारों जन्मों तक तड़पती रहती थी वो, उसको कुछ ही क्षणों में दर्द देकर शुद्ध भक्त बना दिया। उसी तरह से गोविंदे लभते रतिम, ऐसा भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि गोविंद की प्रीति प्राप्त हुई उसको। तो ये सब लोगों का अभी पुरपुतना का इतिहास बताऊंगा आपको मैं। बलि महाराज की कथा आपने सुनी होगी, बलि महाराज वामन देव की कथा सुनी होगी आपने, प्रहलाद के पुत्र विरोचन के पुत्र वो महाबलि थे। तो महाबलि ने यज्ञ किया था, बहुत लंबी कथा है वो, उसको जानते हैं आप, तीन पग वाली कथा। तो ये सब जो हो रहा था ना कि भगवान ने तीन कप जमीन मांगी और थोड़ा सा वाद भी हो गया उसमें, भगवान ने समझाया कि हमको कोई जरूरत नहीं है, जो भी कुछ है, और फिर संकल्प किया ठीक है भाई ले लो तीन पग, और संकल्प किया जल छोड़ा। तो फिर वो भगवान जब आए थे ना, उनका सुंदर वर्णन आता है, उनको जब जन्म हुआ ना तो ब्रह्मा जी ने, अभी लंबी लिस्ट है उसकी, किसने किसने क्या क्या भेंट दिया उनको, जो भी उस छत्री, ब्राह्मण का डंडा, कमंडल, मृगाजिन, जनीव, विद्या, जो भी कुछ था उनका, वो सब कुछ उनको देवताओं ने भेंट में दिया था। गायत्री मंत्र भी भेंट दिया था उनको ब्रह्मा जी ने। जरा उनको रुको ना जरा। तो ऐसा सुंदर उनका श्रृंगार था, कुछ अलंकार नहीं पहने थे, लेकिन जो भी उन्होंने पहना था, उनका जनीव जो था ना वो हजारों सूर्यों की तरह प्रकाशित था, उसको देखते ही एक सीन बनता था। ऐसा सुंदर हजारों सूर्य जैसा प्रकाश जिसके शरीर में है, सुंदर बालक का मनमोहक रूप है, किसी भी माता का हृदय पिघल जाए उनको देखकर। ऐसा सुंदर रूप लेकर जब वो यज्ञशाला में, यज्ञ भूमि में प्रवेश किए ना, तो कहते हैं बलि महाराज यज्ञ में बैठे थे, स्वाहा कर रहे थे, ऐसे अपने आप स्प्रिंग की तरह खड़े हो गए हाथ जोड़कर, ऐसे सारे ब्राह्मण ऐसे खड़े हो गए हाथ जोड़कर, शुक्राचार्य भी खड़े हो गए, मतलब दंग रह गए वो। उनको ऐसा मन में था कि उनको उठकर प्रणाम करें, लेकिन वो ऐसे नेचुरली खड़े हो गए ऐसे। उस समय बलि महाराज की बहन थी वहां पर, नाम था रत्नमाला शायद, वो रत्नमाला को इतना वात्सल्य हुआ उस बालक के प्रति, इतना माँ की तरह प्रेम हुआ कि काश मैं इस बालक को अपना स्तनपान कराती, माता बनकर उसको दूध पिलाती, मेरे स्तन पर दूध पिलाती, प्रेम से इतना वात्सल्य से वो भाव विभोर हो गई। वो देखते ही रहेगा बालक को, वो ताक रही है, ताक रही है, वात्सल्य प्रेम से ताक रही है उसको। आगे सब लीला चल रही है, संभाषण हो रहा है, बलि महाराज आए, प्रणाम किया, उनका संवाद हुआ, वरदान का हुआ, और देखती देखी देखते ही जा रही उसको, इतना प्रेम से देखते रही। अचानक उसने त्रिविक्रम धारण किया, और त्रिविक्रम धारण करके पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, एक पैर से ब्रह्मा ब्रह्मा लोक से पृथ्वी लोक तक नाप लिया, और दूसरे कदम से पृथ्वी लोक से नरक तक सब नाप लिया, सारा जितना भी भूमि था सब नाप लिया। तो एकदम वो दंग हो गई, पूरे वात्सल्य से देख रही है, पूरा चेंज हो गया उसका, गुस्सा आने लगा उसको। ये भी ठीक था, लेकिन उसके बाद में क्या किया, वामन देव ने पूछा अभी क्या करूं, उन्होंने कहा सर पे रखो पैर मेरा, सर पे रख के उसको नीचे धकेल दिया। हम लोग सोचते हैं कि दंड दिया, लेकिन भगवान ने तो बड़ा वरदान दिया उनको सूतरलोक में भेजकर, लेकिन उसको क्या नजर आ रहा है कि सारा साम्राज्य छीन कर मेरे प्रिय भैया को भिखारी बनाकर नीचे धकेल दिया। ऊपर से वरुण ने क्या किया, वरुण ने आकर ना वरुण पास से उसको बांधा, और एक अपमान ऊपर से, एक तो पहला कफल्लक बना दिया, भिखारी बना दिया, और देने के लिए कुछ भी नहीं है उसके पास खुद के सिवा, सब कुछ गया, ऊपर से उसको बांधा और कहते घसीटने लगे उसको, इतना अपमान किया अपने पत्नियों के सामने, सैनिकों के सामने, मंत्रियों के सामने, राक्षसों के सामने, देवताओं के सामने भी, जो भी हिम्मत करके सामने आ रहे थे, पहले तो छुप छुप के थे, अभी सामने आके खड़े हैं, अभी देव हमारे भगवान ने तो विजय प्राप्त कर ली, सब कुछ छीन तो लिया, वापस दे दिया हमको धन राज्य हमारा, तो प्रकट भी हो गए, तो शत्रु भी खड़े हैं, परिवार के गण भी खड़े हैं, पत्नी भी खड़ी है, सब सब चंद खड़े हैं वहां पर, सबके सामने उसको घसीटा जा रहा है। और आचार्यगण बताते हैं उस समय बलि महाराज को इतना अपमानित हो रहे थे, लेकिन अंदर से उनको आनंद के फव्वारे फूट रहे थे, ही वॉज इन कंप्लीट ब्लिस। लोगों को लग रहा है कि इतना अपमान हो रहा है, कितना कष्ट होता रहेगा, लेकिन बलि महाराज को अति आनंद का, भगवान के प्रेम का अनुभव हो रहा था, कृपा का अनुभव हो रहा था, लेकिन उसको नहीं लग रहा था ऐसे। तो जब भी अपने भाई के ऐसी अवस्था को उसने देखा, तो सोचा कि मार डालूं उस बालक को मैं, काश मैं उसको मार डालती, उसको निचोड़ कर दबोच कर मार डाल दूं, ऐसा मन में विचार है। फिर वो रत्नवाला जो है ना, वो पुतना बनी अगले जन्म में, तो मां बनी वो, स्तनपान कराने भी गई, लेकिन विष डालकर गई, मतलब माँ भी बन के गई और विष देने के लिए, मारने के लिए भाई, जो जो उसको दूध पिलाने की माता बनकर और मारने की जो इच्छा, वो मिक्स करके भगवान ने उसको पुतना का जन्म दिया, और फिर उसका भगवान ने उद्धार कर दिया। ये उसका इतिहास है। और एक उसका सुंदर इतिहास है, ये बहुत अनेक रोचक कहानी है, ये केवल मनोरंजन की कहानी नहीं है, हर एक कहानी में इतना सार उपदेश और शिक्षाएं छुपी हुई है हमारे लिए, हर एक चीज से हम प्रेरणा ले सकते हैं। भगवान जब आते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम बनकर, तो एक एक चीज में हजारों लक्ष्य पूरे करते हैं, एक एक घटना में, एक एक चीज में अनेक उद्देश्य पूरे करते हैं। तो ये पूतना, उसका और कैसे संपर्क कैसे आया, उसका संपर्क बरसाने से भी है। कैसे है कि एक समय पर द्वापर युग में हिमालय को पार्वती का प्राप्ति हुई थी, हिमालय की पत्नी और हिमालय को पार्वती की प्राप्ति हुई, और पार्वती ने अन्नपूर्णा है, मतलब समृद्धि समृद्धि, कुछ कमी नहीं है, पूरे विश्व को खिला सकती है वो, ऐसी पुत्री थी वो। उसका शिवजी से विवाह हुआ, पहले सती थी वो, दक्ष राजा की पुत्री थी, उसमें उसका यज्ञ में दहन हो गया, फिर अगले जन्म में वो पार्वती बनकर आई, पर्वत की पुत्री बनकर आई पार्वती, तो सब जगह आह्लाद हो गया, अन्नपूर्णा के रूप में समृद्धि हो गई। तो विंध्याचल को एक तरह से द्वेष नहीं हुआ, ईर्ष्या नहीं हुई, लेकिन लगा कि अरे मुझे भी ऐसे एक कन्या होनी चाहिए, क्यों नहीं, वाई नॉट मी ऑल्सो। तो उसने तपस्या किया, यज्ञ किए, और क्या इच्छा किया उसने, पार्वती खुद तो महान है ही, ऊपर से महादेव के साथ उसका विवाह हुआ है, तो वो ऐसी इच्छा करते हैं कि मुझे ऐसी कन्या होनी चाहिए जिसका पति महादेव से भी अधिक बलवान होना चाहिए। देखो सोच भी कैसे होती है, हाँ इतना नॉलेज भी होना चाहिए आपको सोचने के लिए भी, कि वो महादेव को परास्त कर सकता है, इसका इसका पति होना चाहिए, ऐसी कन्या मुझे होनी चाहिए, इसलिए यज्ञ किया संकल्प लेकर। तो यज्ञ हुआ, संपन्न हुआ, और दो कन्याएं प्राप्त हो गई, एक राधा रानी विंध्याचल की पुत्री के रूप में राधा रानी ने जन्म लिया, और एक चंद्रावली जो गोपी है, दोनों का जन्म हुआ। और वो विंध्याचल के आंगन में अच्छी तरह लीला करने लगे। इधर कंस भी थे उस दुनिया में, उस समय दिग्विजय कर रहे थे, अपने राज्य में रहते थे, तो कंस को खबर मिल गई कि विंध्याचल को एक ऐसी यज्ञ से कन्या प्राप्त हुई है जिसका होने वाला पति महादेव से बलवान होगा। अभी देखो राक्षस लोग कैसे होते हैं, सब राक्षस लोग महादेव की पूजा करते हैं, रावण आदि सब लोग। कंस भी महादेव की, भूतेश्वर महादेव को पूजा करते थे, और कई जगह पर महादेव का तपस्या किया है, बल प्राप्त किया है उनसे। तो ये अभी क्या सोच रहे हैं कि मैं इस कन्या से विवाह करूंगा, तो अपने आप वरदान के अनुसार अपने आप ही मैं महादेव से बलवान हो जाऊंगा, तो पूजा वूजा करने की जरूरत क्या महादेव की, महादेव ही मेरे क्या कहते हैं वध करने योग्य या परास्त करने योग्य हो जाएंगे। तो उसने ना पूतना को भेजा कि जाओ वो दो कन्या को उठा के ले आओ। तो पूतना फिर ऐसे ही तिनके को अभिमंत्रित करके हवाई जहाज बना के मथुरा से उड़ते हुए निकली और महाराष्ट्र में आई। अब विंध्याचल पर्वत पे मंडरा रही है, देख रही है बालिकाएं कहाँ है, देखती है जैसे बालिकाओं को, तुरंत दोनों बालिकाओं को दोनों हाथ से उठाती है, सबके बीच में से राजा है बैठा हुआ, विंध्य राजा, उसकी पत्नी विंध्या की विंध्य पत्नी, सब लोग है उसके, सबके सामने ऐसे कोई होता है ना काइट कैसे होता है वो घार कैसे होती है, ऐसे आते तुरंत मुर्गी के पिल्ले को उठा के तुरंत ऊपर चले जाते, बचपन में हमने देखा है ना टेरेस से, तो वैसे वो आती है, कब उठा के जाती है समझ में नहीं आता किसी को। दो सुंदर कन्याएं पुतना के हाथ से तुरंत आकाश में, और देख रहे गई गई वो गई, तुरंत विंध्याचल ब्राह्मण को बुलाते, ब्राह्मणों को बुलाते हैं पावरफुल ब्राह्मणों को, कहते यज्ञ करो अभी उसके जला दो उसको वहां से। तो यहां पर वो एक कुंड में स्वाहा करके इतने भयंकर मंत्र बोलते हैं कि उसमें आकाश में उड़ने वाले पुतना के शरीर में दाह उत्पन्न होता है। अभी वो सहन कर रहे हैं, वो तेजी से जा रहे हैं मथुरा की ओर, कम से कम राजा को ये लड़कियां दे दूं फिर देखूंगी इस अग्नि का क्या करना है। लेकिन वो अग्नि इतनी भड़कने लगी कि वो अभी कुछ ही समय गई थी, मतलब ज्यादा दूर नहीं गई थी, वो अभी अपना जो विंध्याचल पर्वत है वो महाराष्ट्र में ना, वहां से वो नागपुर कितना दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, हवाई जहाज से देखे तो बहुत कम दूर है। उतने में ना वो उसको इतने दहा हो गया कि एक कन्या को छोड़ दिया उसने। तो वो चंद्रावली जो है ना वो नागपुर में गिरी, नागपुर में नहीं विदर्भ देश में, उस समय वहां पर भीष्मक राजा राज्य करते थे, आगे जाकर रुक्मिणी के पिता बने, वो रुक्मिणी उनको प्राप्त हुई और पांच पुत्र प्राप्त हुए, वो सब आगे का इतिहास है, उस समय उनको पुत्र वुत्र कुछ हुआ नहीं था। तो ये कन्या भीष्मक राजा के विदर्भ नगरी में गिरी और पांच वर्ष तक भीष्मक ने उसका लालन पालन किया। उसके बाद व्रज से पूर्णमासी आई और इस कन्या को लेकर चंद्रभानु को दे दिया उसने, और वो चंद्रावली चंद्रभानु की कन्या बनी 5 साल के बाद, और ये उड़ रही है आकाश में। ये नीचे की घटना बता रहा हूं, ऊपर वो जा रही है, इनके मंत्र अभी स्वाहा चल रहे हैं, हाँ, और अग्नि उत्पन्न हो रही है और वो उत्तर की ओर बढ़ रही है मथुरा की ओर हवाई जहाज मार्ग से। तो जब मथुरा के पास पहुंचती ना तो उसको रहा नहीं जाता, वो अग्नि सहन नहीं होती उसको, वो दूसरी कन्या को भी छोड़ देती है। वो कहां गिरती है, उसका बैकग्राउंड ऐसा है जैसे मैंने आपको 2-3 दिन पहले प्रवचन में बताया था, आप नहीं थे वो, तुम सुचंद्र राजा सुचंद्र और कलावती का विवाह होता है, और कलावती ये महासती थी जिसकी माता को महासती के रूप में शाप मिलकर स्वर्ग से पृथ्वी में जन्म प्राप्त हुआ था, और ये तीन महासतियों से एक पार्वती की माँ, एक सीता की माँ और एक राधा रानी की होने वाली माँ, ये तीन कन्याएं उन तीन महासतियों को प्राप्त हुई थी। आपको समझ में आया, तीन महासतियों ने अपराध किया, स्वर्ग में जाकर चार कुमारों को वंदन नहीं किया, उनको शाप प्राप्त हुआ पृथ्वी पर जाओगे जन्म लोगी, विष्णु ने आकर फिर बोला सॉरी ये शाप नहीं है वरदान है, मेरी इच्छा है कि आप जाओ क्योंकि मेरी तीन महासतियां आपसे जन्म लेने वाली है। तो यथावकाश पृथ्वी पर जन्म लेती है और एक से पार्वती उत्पन्न होती है, एक से सीता उत्पन्न होती है, अभी इस एक से राधा रानी उत्पन्न होने वाली है, वो है कलावती। तो कलावती और सुचंद्र का विवाह होता है और दोनों 12,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं, सूखे पत्ते पेड़ से गिरने वाले खाकर 12,000 वर्ष कठोर तप करते हैं। ब्रह्मा जी उनको दर्शन देते हैं, तो ब्रह्मा जी सुचंद्र को कहते हैं क्या चाहते हो, तो कहते मोक्ष चाहिए, तो ब्रह्मा कहते तथास्तु। तो कलावती बहुत क्रोध में आती है, कैसे, अरे मेरे होते हुए मेरे पति को मोक्ष के दे सकते आप, फिर मैं कहाँ जाऊंगी। तो ब्रह्मा जी डर गए, क्योंकि वो महासती का शक्ति का प्रभाव जानते थे कि महासती को अगर दुखी कर दिया तो उस शाप से मैं भी नष्ट हो सकता हूँ। तो पहले से उन्होंने कहा माफ कीजिए, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको इसका आइडिया बताता हूँ, आप दोनों ना मेरे लोक में रहिए और द्वापर के अंत तक रहिए, जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म होगा तभी श्री कृष्ण भगवान की अंतरंगा शक्ति आपके पुत्री के रूप में जन्म लेगी, तब आप दोबारा पृथ्वी पर जन्म लेना, तब आपको ये कन्या प्राप्त होगी। तो यथावकाश सुचंद्र जो है वो वृषभानु महाराज बने, कंज भानु के 9 पुत्र हुए और कंज भानु के 5वें पुत्र के रूप में वृषभानु महाराज का जन्म हुआ। और यहाँ पर राधाकुंड के पास में गांव है मुखारा, तो मुखारा वहाँ पर मुखाराई यानी इंदुसेन गोप और मुखारा रहते थे, उनको कीर्तिदा के रूप में कलावती प्राप्त हुई। कलावती जो है वो कीर्तिदा के रूप में उनकी कन्या बनी, 2 और बहनें और 1 भाई, ऐसे 4 लोग वहाँ जन्म लिए। और कीर्तिदा का फिर विवाह नंद महाराज के, क्या कहते हैं, सिफारिश से उनका रिश्ता बना वृषभानु महाराज का और कीर्तिदा देवी का, और विवाह संपन्न हुआ। और वो और नंद महाराज, फिर वृषभानु महाराज के सिफारिश से यशोदा का और नंद महाराज का विवाह हुआ, मेहरानों गांव से यशोदा देवी का विवाह फिर नंद महाराज से हुआ। और वो नंद बाबा नंदगांव में रह रहे हैं, वृषभानु महाराज बरसाने में रह रहे हैं, उनको कई समय तक बच्चा नहीं हो रहा है। दोनों अच्छे मित्र थे एक दूसरे के, हमेशा चर्चा करते थे। एक दिन चर्चा किया कि ऐसा करते हैं हम लोग जमुना जी के किनारे रहते हैं जाके, यमुना जी बहुत पवित्र है, बहुत शुभ है, उन यमुना जी के किनारे निवास करने से शायद हमें संतान हो सकती है। तो वो शिफ्ट हो जाते हैं गोकुल में नंद बाबा और रावल में वृषभानु महाराज। तो अभी वो वहाँ रह रहे हैं और वृषभानु महाराज रोज अपने प्राइवेट सरोवर में, जो यमुना जी के जल से ही बना हुआ है, रोज भोर में जाकर वहां पर अपना भजन करते हैं सुबह उठकर। तो ये उसी दिन गए रोज की तरह, अंधेरे के समय जाते, रोज रोज अंधेरा होना चाहिए उस समय, 4 बजे 3:30 बजे जैसे समझो प्रथम प्रहर में। तो उस दिन वहां पर जमुना किनारे अंधेरे के बदले में विशाल स्वर्णमयी प्रकाश था, पूरा किनारा सब जगह पर प्रकाशित हो गया था। आश्चर्य हो गया, आज तो सूर्य तो आए नहीं अभी तक, प्रकाश कहाँ से आ रहा है। और गौर से देखते हैं तो कहते हैं कि वो यमुना के अंदर एक बड़ा कमल है हजारों पंखुड़ियों का विशाल, उसके वहां से प्रकाश आ रहा है। तो जल में प्रवेश करते हैं और गौर से देखते हैं तो वो प्रकाश कमल से भी नहीं आ रहा है, कमल के अंदर एक कन्या है उसके वहां से आ रहा है, वो स्वर्ण कांति वाली दिव्य दैदिप्यमान प्रकाशमान कन्या उसके अंदर एक बालिका के रूप में पड़ी हुई है। तो वो जब उसको पुतना ने फेंका ना, छोड़ दिया ना, तो वो जैसे ही आई पृथ्वी के पास तो तुरंत वहां कमल प्रकट हो गया और कमल में ऐसे कोमल तरीके से उसको वहां पर स्वीकार किया गया। और फिर वृषभानु महाराज जैसे आश्चर्यचकित होकर जा रहे हैं उसके पास, तो ब्रह्मा जी दोबारा आवाज के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा हे वृषभानु महाराज, आप पूर्व जन्म के सुचंद्र महाराज हो, आपने तपस्या किया था और आप दोनों को मैंने भगवान की अंतरंगा शक्ति कन्या के रूप में प्राप्त होगी ऐसा वरदान दिया था द्वापर के अंत में, वही कन्या भगवान की अंतरंगा शक्ति लादिनी शक्ति आपको अभी पुत्री के रूप में उपलब्ध है, कृपा करके उसको घर ले जाइए, उसका लालन पालन कीजिए, आप भी बालिका पुत्र संतान के लिए तड़प रहे हो तो ये आपके तपस्या का और वात्सल्य की पूर्ति के लिए मैंने आपको ये वरदान दिया है। तो वो उस बालिका को लेकर घर जाते हैं, ये भी पुतना का कनेक्शन है, दिस इज पुतनास कनेक्शन। इस प्रकार से राधा रानी का जन्म जो है वो उसके पास भी पुतना का संबंध है। तो भगवान कैसे है, भगवान बड़े दयालु हैं और किसी से भी श्रेष्ठ कार्य करवा सकते हैं, राक्षसी हो या भक्त हो या संत हो, हमको क्या सीखना है। निश्चित रूप से हमारे में से कोई पुतना इतना पापी नहीं है, आई एम श्योर अबाउट इट, लेकिन हमारे अंदर वो जिजीविषा नहीं है, वो इच्छा नहीं है, वो इच्छा का प्राबल्य नहीं है, वो इच्छा की तीव्रता नहीं है जो होनी चाहिए। वो कर्ण मात्र भी इच्छा होगी ना, तो भी भगवान हमको हमारे सारे दुर्गुणों को दुर्लक्ष करेंगे और स्वीकार करेंगे। इसमें एक और रहस्य है, जहां हम बैठे हैं ना वो राधा रानी का धाम है। वो राधा रानी की एक सखी है, उसका नाम ललिता देवी है। वो राधा रानी ने ललिता को ऐसा आदेश देकर रखा है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा मिले जिसके अंदर थोड़ी सी कृष्ण की सेवा करने की इच्छा है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, उसको लेके आना, तो मेरे पास सुपुर्द कर देना उसको। तो ललिता देवी का काम ही यह है कि जहां कहीं भी किसी के मन में छोटी सी भी कण मात्र अणु मात्र भी भगवान के विषय में भावना है, उसको वो पिकअप करती है और राधा रानी के कहने के अनुसार तुरंत राधा रानी को सुपुर्द नहीं करती, वो उसको तैयार करती है, उसको पूरा ट्रेनिंग देकर तैयार करती है और योग्य बनाकर राधा रानी को सौंप देती है। फिर राधा रानी उसको कृष्ण को अर्पण कर देती है। क्या कहती है राधा रानी कि ये ना बहुत अच्छा भक्त है, हमसे भी अधिक बच्चे भक्त, मैं इससे प्रभावित हो गई हूँ, इसको आप शरण दे दीजिए। सर्वोच्च भक्त जो है वो कह रही है कि ये मुझसे भी अधिक अच्छा भक्त है, उसको अर्पण कर देती है। और भगवान जानते हुए भी कि भाई सर्वश्रेष्ठ नहीं है ये, फिर भी वो कह रहे हैं इसलिए स्वीकार करते हैं उसको। ऐसे धाम में हम बैठे हुए हैं जहाँ पर ललिता जी भी यहीं रहती है, राधा रानी भी यहीं रहती है, सब उनका कृपा का ऐसा ठीक, हाँ, बहुत गहरा धुंध यहाँ पर फैला हुआ है, कोहरा। आप देखते हैं कोहरा कैसे होता है, सब जगह फैला होता है, इतना जाड़ा मोटा होता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, इतना स्निग्ध प्रेम का, वात्सल्य का, करुणा का कोहरा यहाँ पर छाया हुआ है, जिसमें हम लोग कुछ सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि उनकी नज़र में हम लोग ऐसे, वी आर इन हर साइट नाउ। अगर हम ठीक से, अच्छी भावना से, उनकी लगन से सेवा करेंगे तो ललिता हमको नहीं छोड़ेगी, हमको ले लेगी गोद में अपने, राधा रानी को अर्पण करने योग्य बनाएगी। राधा रानी तुरंत योग्य बनते ही भगवान को अर्पण कर देंगी और जीवन का कल्याण हो जाएगा। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।